भाव दीपिका लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम कृतात्मने नमः। नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्चायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। स्वभाव विभाव परभावको ज्ञाता सम्यक ज्ञान ताका नमो चित्तदरिया। यह श्री दीपचंद जी कासरीवाल लिखित भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है, जिसमें जीव के 5 असाधारण भावों का विस्तार से वर्णन है। हम यहाँ भी पृष्ठ संख्या 13 पर आ गए, 13। यहाँ कर्माधिकार चल रही है, जो 2 नंबर का कर्माधिकार है, और इसमें मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के भेदों का वर्णन है। मूल प्रकृतियों तो हमने देखे थे कितनी है, तो 8 है, और उसके जो उत्तर भेद है, हम तो हमेशा 148 गिनते हैं, परंतु यहाँ स्पर्शादी जो 20 प्रकृतियां हैं, उसके शुभ और अशुभ दोनों तरह अगर ले लेंगे तो 20 बढ़ गई तो 168 हो जाती है। बहुत विस्तार से केवल ज्ञान गम्य जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण इसके भेद है। यहाँ तो ज्ञानावरण आदि कर्मों की अपनी बात चल रही थी। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण की 9 है, ये तो हमने देख ली है। मोहनी 2 प्रकार के है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियां है, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मुनि की 25 है। उसमें से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि हमने देखे थे, अप्रत्याख्यान अनप्रत्याख्यान और संज्वल। यहाँ तक तो अपनी बात हुई थी 16 कषायों की। अब यहाँ 9 कषायों की बात करेंगे। 13वें नंबर के पृष्ठ पर 3री लाइन से हम पढ़ेंगे। यहाँ कर्मों के नाम भी बताएंगे, उसके उदय में जीव के कैसे भाव होते उसकी भी चर्चा है। हास्य कर्म के उदय होते जीव प्रफुल्लित हास्य सहित होए। देखो, कर्म का उदय जीव के परिणामों को कराता नहीं है, क्योंकि कार्य उपादान से होता है, तब निमित्त की हाजिरी होती है, उपस्थिति रहती है। जहाँ जीव हास्य कर रहा है उस समय हास्य कर्म का उदय पाया जाता है, बस इतनी बात है। बहुरी रति कर्म के उदय होते जीव इष्ट पदार्थन विषय रति करे आसक्तिता धरे, यानी उसके इष्ट पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है। और वो अरति कर्म के उदय होते जीव अन्य अनिष्ट पदार्थन विषय अरुचि धरे छोड़ो चाहे, जो उसको अनिष्ट लगता है उसको दूर करना चाहता है। शोक कर्म के उदय होते जीव निरुद्यमी हुआ चिंता करे शोक करे सो शोक कहिए तिस सहित होए, यानी शोक कर्म के उदय से जीव के शोक होता है, दुख चिंता होती है। भय कर्म के उदय होते जीव इष्ट वस्तु को छिपावे प्राण सकंप होए। शोक को ही बताने के लिए चिंता करता है शोक करता है, यानी उसी का दो पर्यायवाची शब्द बताया, उसी अर्थ का दूसरा शब्द समान अर्थ, यानी शोक करता है ने क्या करता है, विलाप करता है, दुखी दुखी होता है, चिंता करता है।
मान लो अपना घर में किसी का मरण हो गया, उसके बारे में शोक करेगा, के चिंता करेगा कि अभी मेरा क्या होगा, जब वह जीव कहाँ गया होगा। मैंने मरने के पहले भी हम सोचते हैं ना कि मैं फला फला व्यक्ति अपने घर का निकल जाए तो अपनी क्या हालत होगी, ये वही शोक चिंता करना था।
उसके साथ वो अन्य आरति भी होती भय कर्म के उदय होते, जीव इष्ट वस्तु को छिपावे प्राण सकम को है, यानी किसी भय से भयभीत हो जाता है या स्वयं छिप जाता है या हाँ अपना धन कोई चोरी नहीं ले इस भय से धन को छुपाएगा या अन्य ऐसी बस प्राण सकम को हो, यानी वो तो घबरा जाता है डर जाता है। जुगुप्सा कर्म के उदय होते, जीव पदार्थन सो ग्लानी करे, सुमरई अहोठा भाव करे, यानी घृणा भाव करता है, यानी उसके वो अच्छा नहीं लगता पदार्थ, उसके प्रति उसको ग्लानि आती है। पुरुष वेद कर्म के उदय होते, जीव स्त्रीनं सो रमने की वांछा करे, और उस स्त्री वेद कर्म के उदय होते, जीव पुरुष सो रमन का भाव करे। नपुसक वेद कर्म के उदय होते, जीव स्त्री पुरुष दोनों सो रमने का भाव करे। ये तो मोहिनी के सभी हमने 16 कषाय यानी चारित्र मोहिनी के 16 कषाय नौ कषाय की बात देखी थी। अंतराय कर्म के 5 प्रकार है, दानांतराय कर्म, ये कौन कौन से 5 है मालूम है नितिन भाई? लाभांतराय रही है। देखो कैसा याद रखना, दान लाभ भोग उपभोग और वीर, उसके आगे अंतराय शब्द लगा ले। तो दानांतराय कर्म के उदय होते, जीव दान धर्म न करी सके। लाभांतराय कर्म के उदय होते, जीव के अनेक लाभन के अनेक उपाय निरर्थक हो, लाभ न हो सके। क्या कहते हैं ये तो बाह्य चीजों की अपेक्षा से बताया है, उसको दान देने की इच्छा है परंतु उसको अंतराय, किसी ने अंतराय डाला उसको। ये भी देते ना उदाहरण, दृष्टांत देते हैं कि राजा ने किसी को कुछ देना चाहा और फिर भंडारी कहता है उसको रुक जाओ, हाँ खजाने में कुछ है ही नहीं है, जो कुछ कारण बताता है। लाभांतराय ने उसको कुछ लाभ मिलने वाला है, बहुत उपाय करने पर भी वो निरर्थक हो जाते, उसको नहीं हो सकता। भोगांतराय कर्म के उदय होते, जीव खान पानादि भोग न कर सके, और उपभोगांतराय कर्म के उदय होते, जीव वस्त्र आभूषण स्त्री मंदिर, मंदिर यानी उसका घर बहन आदि उपभोग सामग्री न भोग सके। हम उसको बाह्य कारण बताएंगे, रोग आया है या जो कुछ अन्य है, बुखार है या वस्त्र के बारे में अन्य जो कुछ हम कहेंगे तो उसमें बाधा आती है, उसको कहेंगे भोग नहीं सकता। वीर्यांतराय कर्म के उदय होते, जीव के बल यानी वीर की हानि होती है। ये जीव की बात है, शरीर के ग्लानि की बात नहीं है, ये सारे ही 5 ही गुण जीव के है और जीव में ही लगाना चाहिए, समझाने के लिए बाह्य चीजों पर घटित करके बताया। वेदनीय कर्म के 2 प्रकार है, कौन से 2 है? हाँ सातावेदनीय असातावेदनीय। सुख के कारण बाह्य पदार्थन का जीव को अनुभवन करावे सो सातावेदनीय कर्म है। क्या कहा? ये कौन सा सुख है? तो इंद्रिय जन्य सुख है। तो इंद्रिय जन्य सुखों के कारणभूत जो बाह्य पदार्थ है, यानी बाह्य पदार्थों के प्रति उसके सुख रूप की अनुभूति होती है, कल्पना होती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसमें निमित्त कौन है? तो सातावेदी। और दुखों के कारण बाह्य पदार्थन का जीव को अनुभवन करावे सो असातावेदनीय कर्म है। बाह्य पदार्थ लाकर देता ऐसा नहीं कहा, वो बाह्य पदार्थों में उसके सुख की सुख रूप वेदन होता है या दुख रूप वेदन होता है। जैसे पंखा चल रहा है वो कोई साता असाता नहीं लाके खड़ा करता उसको, हाँ तो पंखा उसको सुखरूप लगता है कि दुखरूप लगता है? तो साता के उदय में सुख रूप लगेगा, हसाता में वही दुख रूप लगेगा। कहते हैं बुखार आया, ठंड लग रही है और कोई पंखा लगाए तो उसको दुख रूप लग रहा है। आयु कर्म चार प्रकार का कही है, पेज नंबर 13। हाँ, ये बोल्ड में लिखा है ना, आयु कर्म चार प्रकार का कहिए है। ये हम मूल प्रकृतियों के उत्तर भेद देख रहे हैं। जो नरक गति विषय जीव को अवस्थान राख है, सो नरक नामा आयु कर्म है। आयु कर्म का कार्य क्या है, उस गति में वो रखता है, उसी भव में कायम रखता है। हम कहेंगे मरने नहीं देता है, वो छोड़ने नहीं देता। जो तिर्यंच गति विषय जीव को अवस्थान राखे, सो तिर्यंच नाम आयु कर्म है। जो मनुष्य गति विषय जीव को अवस्थान राखे, सो मनुष्यायु नामा कर्म है। और जो देव गति विषय जीव को अवस्थान राखे, सो देवायु नामा कर्म है। तो सिद्ध गति में कौन सा कर्म है जो सिद्ध गति में अवस्थान रखता है? कोई कर्म नहीं। नाम कर्म की 113 प्रकृतियां हैं, हमने देखा 93 है वैसी, परंतु स्पर्शादि के 20-20 किए हैं, वो शुभ भी और अशुभ भी लिए। गति नाम कर्म के चार भेद है। नरक गति नाम कर्म के उदय ते जीव नरक विषय उपजे है। देखो अभी ये जो मुख्य मुख्य है ना, इसको कहेंगे यहाँ पिंड प्रकृति। गति नाम कर्म कहने से हमें चार गतियां तो मालूम है, तो गति नाम कर्म इतना याद रखेंगे तो उसके चार भेद हमको याद हो जाएगा। 93 याद करना है, बहुत सारी ग्रुप वाली ही प्रकृतियां हैं। तो ये नरक गति नाम कर्म, और नरक गति संबंधी सर्व व्यवहार योग्य भाव हो गए। नरक गति नाम कर्म के उदय से क्या होता है, एक तो जीव नरक में उत्पन्न होता है, दूसरी बात क्या होती है कि नरक संबंधी वहां के व्यवहार योग्य भाव होते हैं, यानी वहां क्या होता है अन्य जीवों के प्रति वो नारत ऐसा भी आता है, यानी उसके किसी के प्रति रति भाव नहीं होगा, द्वेष बुद्धि होती है, अनिष्ट ही लगते हैं, झगड़ा ही करता है, तो यह ऐसे ही भाव उसको नरक गति नाम कर्म के उदय से होते। प्रथम नरक के प्रथम पाथड़े सु पाथड़ा यानी पटल लेयर्स लगाए, सप्तम नरक के अंत पाथड़े पर्यंत 49 पाथड़े है, पाथड़े में जहां जहां उपजे है तिसी योग्य व्यवहार भाव को धरे है। जहां जिस नरक में उत्पन्न होता है वहां के जैसे भाव है वैसे उसके सहज रूप से होते हैं। तो नरक में कितने टोटल पाथड़े है? 49। पहले नरक में कितने हैं? 13। दूसरे में 11, फिर 9, 7, 5, 3 और 1। ये 49 पटल होते हैं टोटल। और नंबर लेना 13 से शुरू करके, दो दो का। दो बहुरी तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय ते जीव तिर्यंच गति विषय उपजे है। अब तिर्यंच गति में तो बहुत सारी वैरायटी है, वहां अनेक प्रकार तिर्यंच योनि, एकेंद्रिय द्वेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय संबंधी वृक्ष कीट भ्रमर स्वान मार्जार आदि जिस योनि विषय उपजे है तहां अनेक प्रकार योग्य किसी संबंधी सर्व व्यवहार भावने को प्राप्त हो। क्या कहना चाहते हैं? एक तो तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है, और तिर्यंच गति में भी कितने एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय वगैरह वगैरह हैं, और जहां जिस योनि में उपजता है और उसके योग्य भाव वहां होंगे। जैसे हमें पता है ना, वो बिल्ली के कैसे रहते हैं, क्या है चूहे क्या करते हैं, अन्य अन्य प्राणी किस तरह से वो रहते हैं, तो कहते वो वैसे भाव उसको सहज उस नाम कर्म के उदय से हो जाते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय तय जीव मनुष्य गति विषय उपजे है। ये गति नाम कर्म है ना, उसके उदय में जो भाव होता है उसको क्या कहेंगे? हाँ गति अवदय, बहुत अच्छा गति अवदय। तहां अनेक प्रकार मनुष्य गति संबंधी कर्म भूमिया आर्य म्लेच विद्याधरादि व भोग भूमिया कुभोग भूमिया व लब्धि पर्याप्त लिखा है, परंतु लब्धि अपर्याप्त आदि अनेक भेदन विषय जो जो व्यवहार है तिस योग्य भावन को प्राप्त हुए। क्या कहना चाहते हैं? पहले में पहले मनुष्य गति के उदय में क्या होता है? तो जीव मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। दूसरे क्या है? तो मनुष्य के योग्य भाव हो गए। तिरियंचों में कैसे? तो खुले में रहते हैं, चारों पैर पर चलते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, जो कुछ या मिले हुए ऐसे ही कच्चा मनुष्य कैसा रहता है? तो घर बांध के रहेगा, वो कुटुंब पद्धति से रहेगा, वो तो खाना पका के खाएगा इस तरह से। तो ये मनुष्य के जैसे उसके भाव होते हैं। उसमें भी उन्होंने भेद डाले कि कर्म भूमिया अलग से रहेंगे, आर्य उनकी बात अलग है, म्लेच्छों की अलग है, उनकी प्रवृत्ति उनकी वृत्ति उनके भाव विचार सब अलग होते हैं। विद्याधरादि, ये विद्याधर मालूम है कौन है? रावण विद्याधर था। उनकी क्या विशेषता होती है? तीन खंड के अधिपति नहीं, विद्याधर तो बहुत सारे हैं ना, उसमें से कोई होगा एकाधी। वहाँ तो विद्याएं होती है उनके, एक तो माँ की तरफ से आई हुई है, पिता की तरफ से आई हुई है, ऐसी अलग अलग विद्याएं, और उन्होंने स्वयं तप करके वो जो प्राप्त की होती है, स्वयं अर्जित जो विद्याएं होती है। ये तो विजयार्ध जो पर्वत है उसकी दोनों बाजू की श्रेणियों में ये रहते हैं। और उनके भी जैसे हम कर्म भूमि में ये जो जीवन यापन कैसे वो छह बताए ना, उसके असीम असी कृषि वगैरह उसकी बात नहीं, उनके जो हमारे लिए देव पूजा वगैरह जो बात बताए, षट कर्म बताए, वैसे उनके भी होते। षट कर्म कौन से श्रावक के? संयम तप दान, वैसे उनके भी होते, उनके भी ऐसे ये बातें बताई। और विद्याधर भी वहां मोक्ष भी जाते हैं, जैसे हनुमान है, रावण के पुत्र है जो मोक्ष गए थे उसी भव में। विद्याधर कर्मभूमि में यानी वो उस भव में मोक्ष जा सकते हैं। एकावतार ने उसी भव में चरम शरीरी। विद्याधर देव नहीं है, मनुष्य है। विद्याधर मनुष्य है, ये हनुमान थे, रावण मैं तो अभी बता रही ना। विद्याधरों में कितने जैसे हमारे में कुछ तो मुनि होकर मोक्ष चले जाएंगे, वैसे विद्याधरों में से भी कोई तो है मुनि व्रत धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। नहीं, देवों में कोई विद्याधर नहीं होते, उनकी रिद्धि होती है, परंतु ये विद्याधर तो मनुष्य ही है।
लेकिन उनका उपजने का स्थान कोई नक्की है?
हाँ, उनकी नगरी अलग होती है, वो मैंने बताया ना अभी, विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में, श्रेणियों ने उसके साइड्स में उनकी अलग नगरी बती हुई है।
फिर वहाँ से यहाँ
वो तो आता आना जाना होता है उसके, उनकी विद्याओं होती है ना, जैसे जैसे हम कैसे विमान में बैठ कर जाते, वो उनका भी होता है, विद्या के बल से वो आते जाते रहते हैं। अब भोगभूमिया को भोगभूमिया, भोगभूमि में भी हमने देखा उत्तम है, मध्यम है, जघन्य है, तो वहां के जीवों का व्यवहार वैसे उसके योग्य होगा। कल्प वृक्ष से उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो जाती है। कुभोगभूमिया मालूम है ना कहाँ होती है? कुभोगभूमि अपना विषय हुआ था ना, भूगोल में आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, लवण समुद्र और कालोदक समुद्र में 48-48 द्वीप है, टापू आइलैंड जैसे, तो उसमें ये कुमानुष रहते हैं। और वहाँ कुभोगभूमि क्यों कहा? एक तो कहीं कहीं तो मिट्टी खाते और कहीं तो कल्प वृक्ष से भी उनके कुछ मिलता है, परंतु ऐसा नहीं मिलता जैसे वो उत्तम भोगभूमि में या जगन मध्यम वगैरह यानी भोग भूमि में मिलता है वैसा नहीं है, और उनके शरीर भी ऐसे कोई अलग अलग प्रकार के, उनके मुख के आकार और कान के आकार मुख्यता से बताए जाते हैं। और ये हाँ दो ही समुद्र में, नहीं आगे कुछ नहीं, आगे के समुद्र में कोई भी द्विंद्रियादि जीव यानी कोई भी जलचर नहीं होते, जलकाय का अलग बात है। समुद्रों में कोई भी यानी मनुष्य तो बाहर जा ही नहीं सकते, परंतु तीर्यंच भी नहीं पाए जाएंगे, वो केवल लास्ट वाला स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाएंगे, और स्वयंभू रमण द्वीप के आउटर हाफ में, बीच वाले समुद्रों में कोई नहीं है, और बीच वाले असंख्यात इतने द्वीप है वहां तीर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है। इतने समुद्र में नहीं द्वीपों में, यानी कितने 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले तो सभी टोटल द्वीप समुद्र है, उसमें आधे तो द्वीप है आधे तो समुद्र है, और उसमें से पहले दो द्वीप निकालो यानी पहला जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप, तीसरा आधा द्वीप और लास्ट का आधा द्वीप, और बाकी इतने सारे जो असंख्यात द्वीप है उसमें तीर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है। तो यहाँ तो मनुष्य की बात चल रही थी अपनी, तो उनके योग्य उनके भाव होते हैं, उसका व्यवहार होता है। लब्धि अपर्याप्त यानी जो सम्मूर्छन मनुष्य है उसको लब्धि अपर्याप्त कहा, तो उनके अपने अपने योग्य भाव होते हैं। ये अपने योग्य भाव यानी केवल वो क्या करते हैं बाह्य प्रवृत्ति नहीं लेना, परंतु भावों में हम देखते हैं ना कौन से कर्म बांध सकते हैं। अभी अपना जो महाबंध के विषय चल रहे हैं कौन से कर्म का बंध करेंगे, तो इसे लब्धि अपर्याप्त हो गए तो न देवगति बांधेगी न नरगति बांधेगी, और उन संबंधी आयु भी उनके नहीं बंधेगी, तो इनके कौन से कर्म बन सकते हैं, तो उसके ऊपर से हम उसके भावों का भी अंदाजा लगा सकते हैं, यानी वो कितने अधिक हीनाधिक बांध सकते हैं, स्थिति कितनी बांध सकती है, मरकर कहाँ जा सकते हैं, उसके सारे नियम है, तो वैसे उनके भाव भी हो गए। देवगति नाम कर्म के उदय ते जीव देवगति विषय उपजे है, कहा भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और कल्पवासी चार प्रकार देवन संबंधी अनेक भेद है। देखो वैसे तो कल्पवासी नहीं कहते हुए हम वैमानिक कहेंगे तो ये चार प्रकार हो गए, क्योंकि वैमानिकों में फिर दो भेद है कल्पवासी और कल्पातीत। कल्प कितने हैं? सोलह बारह है, कल्प बारह है, क्योंकि जहाँ इंद्र भी बारह है ना तो उसके अपना अपना कल्प कहलाएगा, पहले दूसरे में दो दो है, सौधर्म है एक, ईशान में एक, सनत कुमार महेंद्र एक, चार हो गए। फिर आगे के जो चार युगल है वो चार कल्प है, उसका अपना अपना इंद्र है, पहले ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म यानी दक्षिण वाला है, दांतो कापिष्ट में भी दक्षिण वाला है, शुक्र महाशुक्र में उत्तर वाला है, शतार सहस्रार में भी उत्तर वाला है, यानी ये चार कल्प, और ऊपर के चार टोटल 13वां 14वां 15वां 16वां, इस तरह से 12 कल्प है। परंतु हम चार प्रकार के जब देव कहेंगे वहां उसको वैमानिक कहना पड़ेगा। उन्होंने साधारण में कल्पवासी को ले लिया है। इसे कहा जिस भेद विषय उपजे है तिस भेद संबंधी जो जो व्यवहार है तिसी योग्य भावन को प्राप्त हुए है। अभी उनमें भी भवनवासी आदि जो कोई उनकी विशेषताएं हैं तो वैसे उनके वैसे ही भाव हो गए। जैसे हमने देखा असुर कुमार है वो नरक में जाते हैं वहां लड़वाते हैं परस्पर बिड़ाते हैं, व्यंतरों में कुतूहल ज्यादा होता है, तो यहाँ आकर मनुष्यों के वगैरह भी अन्य अन्य रूप लेके भी उनके कोई ऐसी कहते हैं कोई किसी को मदद करेंगे किसी को तकलीफ देंगे ऐसी बात। और ये ऊपर ऊपर के देवों की जो शुक्ल रेशा वगैरह होती है तो उनके कुछ गमन का भी ज्यादा भाव नहीं होता, ऊपर ग्रेवे आदि के तो जीव कभी नीचे आते भी नहीं, तो उनके ऐसे ही सहज भाव हो जाते हैं। 14 नंबर पृष्ठ पर आए हैं। ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जाति नाम कर्म पांच प्रकार का है। अभी तक हम कौन सा नाम कर्म देख रहे थे? गति नाम कर्म के चार भेद देखे। अभी इसको दो नंबर डालना है क्योंकि दूसरा ग्रुप है, पिंड प्रकृति कहते हैं इसको। तो जाति नाम कर्म के पांच प्रकार है। मिली भाई कौन से पांच प्रकार है? पंचेंद्रिय जाति, तहा एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय ते जीव एकेंद्रीय हुए है। बेइंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय ते जीव बेइंद्रिय हुए है। तेइंद्रिय जाति कर्म के उदय ते जीव तेइंद्रिय हुए है। चौइंद्रिय जाति कर्म के उदय ते जीव चौइंद्रिय हुए है। और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय ते जीव पंचेंद्रिय है। परंतु पंचेंद्रिय होने से वो चारों गति में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ तो केवल जाति की बात करें। देखो जीव जहाँ उत्पन्न होता है वैसे उसकी गति जाति जो कोई शरीर वगैरह वैसे वैसे उसका सहज रूप से उदय होगा। बनते समय तो हमने देखे थे उसके पैकेज कैसे बनते हैं, देवगति के साथ कौन सी प्रकृतियां बनती है, कहाँ क्या बनती है। यहाँ तो उदय की अपेक्षा बात करें। अब शरीर नाम कर्म पांच प्रकार का है। अब ये ग्रुप नंबर तीन है। तो शरीर नाम कर्म के पांच प्रकार कौन से अरविंद भाई? शरीर नाम औदारिक वैक्रिक आहारक कौन से वर्गणा से बनेंगे?
ये
नाम कर्म के कार्बन वर्गणा, ये तो हम बार बार आप भी बता रहे शरीर नाम कर्म है शरीर नाम। हमेशा कोई तो मिलता है हमको ये बताने वाला। देखो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय ते जीव के मनुष्य तिर्यंच गति विषय औदारिक शरीर निपजे है। देखो ये जिस नाम कर्म का शरीर नाम कर्म का उदय है ना, ये योग का निमित्त है। तो इससे उत्पन्न योग में यानी आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, औदारिक जाति के परमाणु को ग्रहण करें। वैसे औदारिक वैक्रियक और आहार के तीनों के जो उसका रॉ मटेरियल है आहार वर्गणा से ही बनता है। तीनों के लिए आहार वर्गणा ही कहेंगे, परंतु जो आहार वर्गणा औदारिक रूप परिणाम की है उससे आगे बढ़कर जो आहार वर्गणा वैक्रिक शरीर रूप से परिणाम की है और जो आहार वर्गणा आहारक शरीर रूप से परिणाम की उनमें भेद है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म है आगे आगे वाले। ये मेरे ख्याल से श्वेतांबर मत में ये तीन के आहार वर्गणा के तीन अलग अलग भेद बताए हुए हैं कि हम जाते वहां लोग बोलते हैं ना, उसके तीन उसके नाम ही अलग अलग बताए हुए हैं, ऐसे कुछ है उसमें। परंतु है तो तीनों आहार वर्गणा हो। हाँ नहीं अठारह पाक ये तो अलग उनके कोई क्लासिफिकेशन अलग है ना, नाम तो वही हो गए रिपीट मगर वो तो। अब हम यहाँ पढ़ेंगे शरीर नाम कर्म, वो दोष अलग पाप वो बता दे। वैक्रिक शरीर नाम कर्म के उदय पे जीव के देव व नरक गति विषय वैक्रिक शरीर निपजे। देवों के भी वैक्रिक शरीर है नारकियों के भी, तो उनके वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। आहारक शरीर नाम कर्म के उदय पे जीव के षष्ठम गुणस्थानवर्ती महामुनि के आहारक शरीर निपजे है। यानी जब आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होता है तो उस संबंधी आहार वर्गणा को ग्रहण करके आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है। तेजस शरीर नाम कर्म के उदय ते सर्व जीवों के तेजस शरीर निपजे है। अब पहले औदारिक के लिए मनुष्य तिर्यंच गति वालों को बताया, वैक्रिक के लिए नैवनारकिक को बताया, आहारक के लिए छठे गुण स्थानवर्ती, वो जिनके उसका उदय होगा उसके लिए बताई बात, और तेजस शरीर के लिए क्या कह रहे, सर्वजों के तेजस शरीर निकट। और कारमान शरीर नाम कर्म के उदय थे सर्व जीवों के ज्ञानावरणादि कर्मनिको पिंड कारमान शरीर निपटे है, यानी सभी आठों ही कर्मों का जो स्कंद है गुणा हुआ है उसको क्या कहें हम, कारमान शरीर उत्पन्न होता है। ये बात ख्याल में आई? अब शरीर के बाद अंगोपांग। देखो ये संस्थान और शरीर बंधन और संघात इसी नाम के हैं, यह शायद अलग बताए कि नहीं मालूम नहीं, आगे चलकर बताए 16 पर, जब ये आएगी तभी बात करेंगे। अभी तो हम तीन हमने पिंड प्रकृति देखी, नितिन भाई बताएंगे कौन से नाम कर्म को, नाम कर्म में हमने तीन भेद देखे अभी तक। हाँ बोलो, गति नाम कर्म, जाति और शरीर, तीन भेद देखे। अब अंगोपांग नाम कर्म तीन प्रकार के, इसको चार नंबर डालो। तो शरीर तो पांच प्रकार के, शरीर नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म तीन ही, किसको नहीं दिया अंगोपांग, तेजस कारमन के लिए अंगोपांग नहीं है। अंगोपांग नाम कर्म तीन प्रकार का है, औदारिक अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौन्द्रिय पंचेन्द्रिय तिर्यंच मनुष्य के अपने अपने योग्य औदारिक अंगोपांग को, ये औदारिक अंगोपांग की बात है, मनुष्य तिर्यंचों के किसको छोड़ा, एक इंद्रिय को छोड़ा, सभी तीरियंचों को नहीं लिया, एक इंद्रियों को छोड़कर, क्योंकि तीरियंचों के यानी एक इंद्रियों के अंगोपांग नहीं होता। तो ये वनस्पति के अंगोपांग है कि नहीं है, वो तो शाखा है, पत्ते है, फूल है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब मिलकर एक जीव नहीं है, एक जीव नहीं है, नहीं तो उसके अंगोपांग मानने पड़ते, उसके अवयव मानने पड़ते हैं। ये तो हमने पहले भी देखा है, उसमें तो असंख्यात जीव होंगे, एक एक पत्ते में भी असंख्यात, वो प्रत्येक शरीर वाले भी उनके शरीर एक दूसरे से जुड़कर स्कंद रूप से तैयार होते, हमें जो दिखाई देता है वो स्कंद दिखाई देता है, वहां एक जीव नहीं है, अनेक जीवों के अपना अपना एक एक शरीर मिलकर वो सब जुड़कर इतना बड़ा स्कंद तैयार होता
है।
हाँ निकल जाता है, अचित हो जाता है ना, वो पहले सचित था। ये अंगोपांग कौन सा औदारिक हुआ, वैक्रिक अंगोपांग नाम कर्म के उदय दे देव नारकी के अपने अपने योग्य वैक्रिक अंगोपांग हुए हैं। अपने अपने योग्य क्यों कहा, देवों के अंगोपांग अलग है और नारकियों के अलग है, और वहां उनकी जो शरीर की विशेषता है वैसी उनकी रचना होगी, देवों के शरीर की जैसी उनकी रचना होगी। अभी इनके जो कोई जैसा संस्थान, वो संस्थान नामकर में भी आएगा, उसके अंदर मुंडक संस्थान होता है नारकियों को, तो वहां का वैकरिक शरीर भी उस पद्धति के जो परमाणु से बना हुआ है। आहारक अंगोपांग नाम कर्म के उदय थे आहारक शरीर के योग्य आहारक अंगोपांग होता है, ये तो हमने देखा ना, एक हाथ प्रमाण शब्द धातु रहित सफेद पुतला निकलता है। कौन सा
शरीर नाम कर्म भी वही नाम है, यहाँ पे शरीर दोनों का आपस में।
हाँ देखो कोई नहीं है, अंगों शरीर नाम कर्म के उदय से क्या होता है, औदारिक शरीर की उत्पत्ति होती है। अंगोपांग से क्या होता है, औदारिक शरीर में जो छोटे छोटे अवयव यानी उंगलियां हैं, अंग और उपांग, अंग यानी हाथ पैर नाक वगैरह आंखें, तो ये अंग हुए, और उपांग यानी अभी हाथ ये अंग हुआ और उसकी उंगलियां ये उपांग हुए, तो इसे द्विंद्रिय आदि देखो ना, वो शरीर की रचना कैसी है, उसके कितने अवयव अलग अलग, पैर है, ट्रंक है, मुंह है, तो ये अंग है और उपांग भी है उसके। उस पर हम उसका औदारिक अंगोपांग ही कहेंगे उसको।
शरीर नाम कर्म सबका एक ही,
औदारिक शरीर नाम कर्म है और औदारिक अंगोपांग नाम कर्म है, दोनों ही है उनके। जितने भी हो उसमें वो नहीं नक्के होता है, अंगोपांग है कि नहीं इतना ही बदला। अभी वो कितने उंगलियां होगी वो प्रमाण नाम कर्म निर्माण में चला जाएगा। निर्माण में भी प्रमाण निर्माण और स्थान निर्माण होता है। आंखें किस स्थान पर होगी, जैसे मनुष्य की कहाँ दिखाई देते हैं, और वो डेढ़ का होता है ना फ्रॉग, उसकी कहाँ होती है, मछली की कहाँ होती है, तो अपनी अपनी जगह निश्चित है, वो स्थान निर्माण पर चला जाएगा। उसमें भी प्रमाण में पांच उंगलियां तो किसी की छह भी हो जाती है ना, या अन्य भी जो प्रमाण अलग अलग हो जाता है तो वो प्रमाण नाम
होगा। हाँ,
हाँ, इसमें उपांग होते अंगोपांग होते, बस इतनी बात। किसको नहीं होगा, एकेंद्रिय को नहीं होगा, एकेंद्रियों में वो अंगोपांग नहीं होता है, औदारिक अंगोपांग। बाकी देवनारकियों को वैकृत अंगोपांग होगा ही, आहारक शरीर वालों को आहारक अंगोपांग होगा ही। सत्य चलेगा हर एक के साथ, होता ही है। निर्माण से क्या होता है, वो तीन निर्मित होती है ना हर समय, लगेगा उसके औदारिक शरीर की तो रचना हो रही है ना, उसके भी अपने अपने योग्य वहाँ रचना तो हो ही रही है, उसको भी निर्माण नाम करना। ये हमने पहले याद किया था, कौन से ध्रुवोदयी है, कौन से ध्रुवबंदी है। यानी इसमें क्या नक्की हुआ कि केंद्रीय जीवों के अंगोपांग नाम कर्म होता ही नहीं है। मनुष्य तीरेंचों के द्विंद्रियादि से लेकर औदारिक अंगोपांग, देवनारकियों के वैकिरिक अंगोपांग, आहारक शरीर वालों के आहारक अंगोपांग। अब ये चार हो गए ग्रुप्स, पांचवा ग्रुप संस्थान नाम कर्म षट प्रकार के। संस्थान नाम आकार का है, जैसा संस्थान कर्म का उदय होए तैसा ही शरीर का आकार होए। ये निमित्त बनता है ना, शरीर का विशिष्ट आकार क्यों हुआ, तो कहते उसका संस्थान नाम कर्म का उदय है। और सिद्धों को निराकार क्यों कहा, बिल्कुल उनके कोई कर्म नहीं रहे अभी, पूर्व में ये कर्म के संस्थान नाम कर्म के निमित्त से शरीर का और उस आत्म प्रदेशों का भी वैसा आकार रहता था, शेप जिसको हम कहेंगे। अब यहाँ क्या है, वो संस्थान नाम कर्म नहीं रहा, तभी उसके कारण उनका आकार नहीं कहलाएगा, पहले इसके निमित्त से आकार बदलते थे। देखो संस्थान नाम आकार का है, संस्थान नाम आकार का अर्थ होता है संस्थान शब्द का मीनिंग क्या है, आकार। जैसा संस्थान कर्म का उदय हो तैसा ही शरीर का आकार हो। हम क्या समझते हैं, हमारे बच्चे ना इतना कैसा अच्छा आकार वाला हो गया, नाक आंखें हमारे जैसा हो गया, क्यों, वो अपना संस्थान नाम कर्म नहीं ले आया। समचतुर्थ संस्थान नाम कर्म के उदय थे पंचेंद्रिय तीर्यंच मनुष्य देव के शरीर का आकार समचतुर्थ संस्थान शोभायमान हुए। यानी हम कहेंगे ना एकदम प्रोपोर्शनेट बॉडी, किस किस को लिया, मनुष्य देव और तीर्यंच को लिया, क्यों, हाँ नारकी कुहुंडक संस्थान, ये समचतुर्थ संस्थान इन तीनों में हो सकता है। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म के उदय थे पंचेंद्रिय कर्मभूमिया तीर्यंच मनुष्य शरीर का आकार न्यग्रोध परिमंडलाकार हुए है। देखो ऊपर समचतुर्थ में क्या लिया, पंचेंद्रिय तीर्यंच मनुष्य देव सब लिया, हाँ अभी नगरोत परिमंडल में क्या लिया, कर्म भूमि के तिर्यंश लिए और मनुष्य लिया, क्योंकि भोग भूमि के तिर्यंश तो उसमें चले। हाँ, समचतुर्ष कर्म भूमि के भी समचतुर्ष हो सकते हैं। हाँ, उनमें तो सभी हो गए, परंतु ये संस्थान किसमें होगा, तो कर्मभूमि अतिरिंच मनुष्य का आकार, शरीर का आकार न्यग्रोध परिमंडलाकार होता है। न्यग्रोध परिमंडल नाम वटवृक्ष का है। वटवृक्ष कैसे है, वहां ऊपर ऐसा चौड़ा ऐसा फैला हुआ है ना, जैसे वटवृक्ष नीचे ते पतला और ऊपर ते मोटा होए, तैसे शरीर का आकार नीचे पतला और ऊपर मोटा होए। सो न्यग्रोध परिमंडल कहिए। गौरी, स्वातिक संस्थान नाम कर्म के उदय थे। हमने कौन सा देखा, पहला समचतुर्ष न्यग्रोध परिमंडल, अब स्वातिक। इसके उदय से कर्म भूमि या मनुष्य तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच के शरीर का आकार सातक होए। सातक नाम बांवई का है। जैसे बांवई नीचे ते मोटी ऊपर ते पतली होए, तैसे शरीर का निचला भाग मोटा होए और ऊपर का पतला होए, ऐसा सांतक आकार होए है। उसको सांतक कहा उन्होंने। बांवई किसको कहते, बांवई नीचे ते स्वाति बांवई बांवई नीचे मोटी ऊपर ते पत्ती। अब कहाँ है शांत को भाई, कुब्जक संस्थान नाम कर्म के उदय थे। कर्म भूमि या पंचेन्द्रिय तिर्यंच मनुष्य के शरीर का कुब्जक आकार हुए। देखो ये बीच वाले जो है ना, उसमें नारकियों को भी नहीं लिया और देवों को भी नहीं लिया। समचतुर्थ में मनुष्य तिर्यंच पंचे कर्मभूमि तिर्यंच मनुष्य सॉरी समचतुर्थ में तो तिर्यंच मनुष्य देव लिए। हाँ, न्यग्रोध परिमंडल से लेकर कर्मभूमि तिर्यंच लिए और मनुष्य भी लिए। स्वातिक के लिए भी कर्मभूमि मनुष्य तिर्यंच लिए, फिर कुब्जक के लिए भी कर्मभूमि तिर्यंच मनुष्य लिए। अब वामन संस्थान में भी कर्मभूमि मनुष्य तिर्यंच लिए। अब हुंडक संस्थान के लिए हम पढ़ेंगे आगे, पहले वामन पढ़ लेते। तो वामन संस्थान नाम कर्म के उदय थे। कर्मभूमि या पंचेन्द्रिय तिर्यंच मनुष्य के शरीर का वामन आकार हुए है। अपने अपने सजातीय शरीरंतई ठिंगना शरीर हो। सजातीय शरीर यानी जो मनुष्यों के जो एवरेज है उससे ठिंगने हो गए। सजातीय का अर्थ होता है उनके अपने अपने जो सामान्य से मनुष्यों के जो शरीर का आकार होगा उससे एकदम ये ठिंगना आकार होगा। सो वामन आकार जानना आप वो समझते हैं, बटू बटू बटू। हाँ, गौरी, हुंडक संस्थान नाम कर्म के उदय थे। अब ये हुंडक संस्थान तो नारकियों के तो नियम से होता है, मनुष्य तिरेंचों में भी होगा। कौन से कर्म भूमि के और किसके होगा, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्थ। तो हुंडक संस्थान नाम कर्म के उदय थे। एकेंद्रिय बेन्द्रिय तीन्द्रिय चौइंद्रिय पंचेन्द्रिय कर्म भूमिया तिरेंच मनुष्य और नारकी के, वहां का अर्थ होता है और नारकी के शरीर का हुंडक आकार हो है। समझ में ना, पहले वाला है तिर्यंच मनुष्य देव को लिया, लास्ट वाला है हुंडक वाला है, वो तो तिर्यंच मनुष्य तो है ही है, नारकी भी है और एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक सब है। पूर्वोक्त कहिजे शरीर के पंच आकार, 300 रहित अन्य सकल शरीर के आकार हुंडक संस्थान जाने। क्या कहते हैं, पहले पांच अगर संस्थान छोड़ दो आकार बताया है, बाकी जो कैसे भी अलग अलग आकार है, एक इंद्रिय का अलग है, द्विंद्रिय का अलग है, तीन्द्रिय का अलग है, कोई लंबा है कोई चौकोण है कोई वो ईयर कैसे, वो सारे कैसे हैं, तो हुंडक संस्थान वाले संस्थान के मूल भेद तो ऐसे छह कहे और इनके विशेष भेद असंख्या थे नेचुरली, क्योंकि वो तो आकार के कितने भेद हो गया लोग। सो ही संस्थान नाम कर्म के मूल भेद तो छह है और विशेष भेद असंख्या थे। जैसा जैसा कर्म का उदय हो तैसा तैसा ही शरीर का आकार हो। ये तो हम यहाँ निमित्त की अपेक्षा कथन है ना, ये सभी यहाँ पर कर्म की बात होगी तो निमित्त की भाषा में ही कहेंगे जरूर। ये तो संस्थान हुआ पांचवा ग्रुप, ये पांच ग्रुप के नाम बताएंगे नीलिन भाई। नाम कर्म के भेद चल रहे हैं बोलो। अभी तक हमने पांच देखे, कौन से संस्थान? वीरज भाई रिपीट करेंगे, अंगोपांग कितने के? अंगो तीन और संस्थान के और शरीर के और गति के जाति। अब सहनन ग्रुप नंबर छह अपना। तो सहनन नाम कर्म छह प्रकार है सो ही कहे। पहले सहनन किसको कहना? तो सहनन नाम हाड़न का है यानी अस्थि हड्डी। वज्र ऋषभ नाराज सहनन नाम कर्म के उदय ते। भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच के। देखो भोग भूमि में जो स्त्री हो या पुरुष हो उनके नियम से वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है तिर्यंचों के भी वहां इन्हें। और कर्म भूमिया पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच मनुष्य के शरीर विषय। ये संगी लिया, असंगी को नहीं लिया। वज्र का हाड़ होए और वज्र का ही ऋषभ कहिए बंधान होए। तीन करी हाड़ बंध्या होए यानी हड्डियां किससे बंधती है? तो ऋषभ से, तो वो भी वज्र के है। और वज्र की कीली करी कीलित होए। वज्र की कीली यानी जैसे खील होती है, जैसे कोई ऐसा जॉइंट है ये आपके इसमें है ना, ये डाला और बीच में कील डाली तो ये अलग नहीं हो सकती है। तो वज्र की ही कील है, वो टूट नहीं सकेगी, तो उसको कहेंगे वज्र ऋषभ नाराज सहन। बहुरी वज्र नाराज सहन नाम कर्म के उदय ते। कर्म भूमिया संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच और मनुष्य के शरीर विषय। उसमें तो भूभूमि को भी लिया और कर्मभूमि वालों को भी लिया। और यहाँ कर्मभूमि संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच और मनुष्य के शरीर विषय। वज्र का हाड़ होए और हाड़न का बंधन सादा होए यानी वो वज्र का नहीं है ऑर्डिनरी। ताकरी हाड़ बंधा होए और वज्र की कीली करी कीलित होए ऐसा वज्र नाराज सहनन होए यानी हड्डी के बंधने जो बंधन है हड्डियों का तो वो तो ऑर्डिनरी है साधारण है, मगर वो उसके कीलित वज्र की कील से ही कीलित होते हैं। बहुरी नाराज सहनन नाम कर्म के उदय ते। कर्म भूमिया संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच मनुष्य के शरीर विषय। हाड़ तो वज्र का होए और सामान्य कीलन करी कीलित होए ऐसा नाराज सहन। बहुरी अर्ध नाराज सहनन नाम कर्म के उदय ते। कर्म भूमिया संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच मनुष्य के शरीर विषय। वज्र का हाड़ होए और सामान्य कीलन करी आधा तो कीलित होए और आधा बिना कीलित होए ऐसा अर्ध नाराज सहनन है। जो हड्डी है वो आधे ही कीलित है, आधा तो बिना कीलित। कीलित सहनन नाम कर्म के उदय ते। कर्म भूमि या संगी पंच इंद्रिय तिर्यंश मनुष्य के शरीर विषय सामान्य हाड़ होए। अभी तक तो ऊपर तो यहाँ सामान्य हाड़ लिया, अभी तक तो वज्र का हाड़ देख रहे थे, और सामान्य कीली करी कीलित होए, ऐसा कीलित सहन होता है। असंप्राप्त सुपाटी का सहन नाम कर्म के उदय ते कर्म भूमिया विषय वे इंद्रिय ते इंद्रिय पंचविंद्रिय पंचेन्द्रिय संगी असंगी तिर्यंच के और मनुष्य के सर्प शरीरवत जुदा जुदा हाड़ हो और नशा करी बंदा हो, कीले करी रहित हो, यानी वो कीले नहीं होते उनके जॉइंट्स में, ऐसा असंप्राप्त सुपाटिका सहन हो। क्या कहना चाहते हैं, सर्प के शरीर में अलग अलग हड्डियां हैं और वो बंधन से बंधी हुई है, जैसे हमारी भी जो एक दो हड्डी है तो एक के दो ऊपर दूसरी मुंह होती है, केवल वो टेंडन से बंधी हुई है, जैसे घुटना है, ये जॉइंट है, ये क्या है, दो अलग अलग एक के दो ऊपर इस तरह से चलती है और उसको वो बंधन से बंधी हुई है, उसमें कोई कील नहीं है, कीला नहीं है। और नशा कर ही बंधा हुआ, नसों के द्वारा वो बंधे हुए रहते हैं। इन छह कर्मों के भी विशेष भेद असंख्यात है, ताहिते सहन के भेद भी असंख्यात जाने। एक सहन किस किस को नहीं होगा, देव में नहीं है, नारकी में नहीं है, और आहार शरीर में नहीं है, और एक इंद्रिय में नहीं है। तो भी छह ग्रुप हुए। अभी बंधन नाम कर्म पांच प्रकार है, पंच प्रकार शरीर नाम कर्म के उदय ते हो है। पंच शरीर योग्य पुद्गल कर्म वर्गणा, तिनका परस्पर बंधन करे सो बंधन नाम कर्म जानना। एक्चुअली कुछ ना, ये सेकंड वाक्य अधूरा होना चाहिए, वो फुल स्टॉप दिया वो नहीं चाहिए। देखो बंधन नाम कर्म के पांच प्रकार है, पंच प्रकार शरीर नाम कर्म के उदय तय हुए है, पंच शरीर योग्य पुद्गल कर्म वर्गणा, ऐसा चाहिए, बीच में वो फुल स्टॉप नहीं चाहिए। यानी शरीर नाम कर्म के उदय तय क्या होता है, उस जाति के परमाणुओं का ग्रहण होता है। अब ये जो ग्रहण हुआ, तिनका परस्पर बंधन करे सो बंधन नाम नाम कर्म है। शरीर का ग्रहण, शरीर नाम, ये जो औदारिक के या वैक्रिक के आहार के आहार वर्गणा को जो ग्रहण हुआ वो शरीर नाम कर्म के उदय से। अब वो जो कर्म कारमाण वर्गणा, ये भी उसके एक बंधन रूप कर्म होकर एक बंधन में तो होगी ना, एक उसका स्कंद बनेगा, तो वो बंधन नाम कर्म के उदय से हुआ। औदारिक बंधन नाम कर्म के उदय तय औदारिक शरीर योग्य कर्म परमाणु का, ये कर्म ही नहीं है, नौ कर्म परमाणु का कहना चाहिए, क्योंकि औदारिक शरीर योग्य कौन से हो गए, तो नौ कर्म हो गए। वैक्रिक बंधन नाम कर्म के उदय तय वैक्रिक शरीर योग्य परमाणु का, नौ कर्म परमाणु का। आहारक बंधन नाम कर्म के उदय थे आहारक शरीर योग्य परमाणु का, हम वो कर्म शब्द डाल निकाल कर परमाणु का कहेंगे। तेजस बंधन नाम कर्म के उदय थे तेजस शरीर योग्य परमाणु का, और कारमाण बंधन नाम कर्म के उदय थे कारमाण शरीर योग्य कर्म परमाणु का। अभी यहाँ कर्म परमाणु कहे तो चले, परस्पर बंधन करे सो पंच प्रकार का बंधन नाम कर्म है। ये ख्याल में आई बात, यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देश। वीरेश भाई।